नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। रिलायंस पावर और उसकी सहायक कंपनी ने वर्डे पार्टनर्स के साथ 1200 करोड़ रुपए तक कर्ज लेने के लिए एक समझौता किया है। रिलायंस पावर ने शेयर बाजार को बताया कि कंपनी और उसकी सहायक इकाई ने कुछ ऋणों के पुनर्गठन एवं अन्य उद्देश्यों के लिए वर्डे पार्टनर्स से 1200 करोड़ रुपए तक कर्ज लेने के लिए एक सांकेतिक सहमति पत्र पर दस्तखत किए हैं। वर्डे पार्टनर्स एक प्रमुख वैश्विक वैकल्पिक निवेश फर्म है जो ऋण एवं ऋण से संबंधित परिसंपत्तियों में विशेषज्ञता रखती है। वैश्विक बाजारों में मिले जुले रुख के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े शेयरों में बढ़त के चलते प्रमुख शेयर सूचकांकों ने सोमवार को शुरुआती कारोबार में सकारात्मक शुरुआत की। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स 286.36 अंक चढ़कर 59,769 पर था, जबकि एनएसई निफ्टी 77.9 अंक बढ़कर 17,617.35 पर पहुंच गया। सेंसेक्स में आईसीआईसीआई बैंक, टेक महिंद्रा, आईटीसी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी बैंक बढ़ने वाले प्रमुख शेयरों में शामिल थे। दूसरी ओर नेस्ले, पावर ग्रिड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डीज और हिंदुस्तान यूनिलीवर में गिरावट हुई। पिछले सत्र में शुक्रवार को सेंसेक्स 36.74 अंक या 0.06% की बढ़त के साथ 58,803.33 पर बंद हुआ था। दूसरी ओर निफ्टी 3.35 अंक या 0.02% की गिरावट के साथ 17,539.45 पर बंद हुआ था। अन्य एशियाई बाजारों में सोल, टोक्यो और हांगकांग के बाजार सोमवार को लाल निशान में थे, जबकि शंघाई में बढ़त के साथ कारोबार हो रहा था। अमेरिकी बाजार शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुए थे। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1.9% उछलकर $94.79 प्रति बैरल के भाव पर पहुंच गया। शेयर बाजार के अस्थायी आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शुक्रवार को शुद्ध रूप से 8.79 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। केपीआई ग्रीन एनर्जी गुजरात मिश्रित बिजली योजना 2018 के तहत भावनगर में कुल 16.10 मेगावाट की हरित मिश्रित परियोजना स्थापित कर रही है। कंपनी ने सोमवार को शेयर बाजार को बताया कि मिश्रित बिजली परियोजना में भावनगर के भूंगर साइट पर विकसित होने वाली पवन और सौर क्षमता शामिल है। कंपनी ने कहा कि उसने विभिन्न कॉरपोरेट पक्षों के साथ मिश्रित बिजली परियोजना से पैदा होने वाली बिजली की बिक्री के लिए दीर्घकालिक पीपीए यानी बिजली खरीद समझौता किए हैं। ये परियोजना मार्च 2023 में चालू हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि महामारी से उबरने के बाद भी दुनिया कई नई चुनौतियों का सामना कर रही है। भारत को 2047 तक विकसित देश बनने के लिए बहुत सी चीज़ों को फिर से आकार देना होगा। इसके लिए डिजिटलीकरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचा हैं सबसे बड़े साधन। सीतारमण ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों, कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर अपने आप नहीं बल्कि उद्योग के साथ नियमित परामर्श के साथ वसूला जा रहा है। सीतारमण ने कहा, कर आधार बढ़ाना एक प्रमुख मुद्दा है और ऐसा अधिक उचित ढंग से तथा तकनीक की मदद से किया जाएगा। देश के ऑटो सेक्टर में कार निर्माता कंपनियों ने अगस्त महीने में अपनी कारों की कुल बिक्री के आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिससे अगस्त महीने में कंपनियों की कारों की बिक्री में आई बढ़त या कमी को देखा जा सकता है। इन आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2022 में मारुति सुजुकी, हुंडई मोटर्स और टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। मारुति सुजुकी देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है, जो जुलाई 2022 में पहले पायदान पर रहने के बाद अब अगस्त 2022 में सबसे ज़्यादा कार बेचकर देश का बेस्ट कार सेलिंग ब्रांड बन चुकी है। मारुति सुजुकी कार सेक्टर में अकेले 40.87% की हिस्सेदारी वाली कंपनी है। मारुति सुजुकी ने अगस्त 2022 में अपनी कारों की 1,34,166 यूनिट को बेचा है, जबकि जुलाई 2022 में कंपनी ने अपनी 1,42,850 यूनिट को बेचा था। बिक्री में आई इस गिरावट के बाद भी कंपनी अगस्त महीने में अपनी नंबर एक पोजीशन बचाने में कामयाब रही है। मारुति सुजुकी के बाद हुंडई मोटर्स अगस्त में देश की सबसे ज़्यादा कार बेचने वाली दूसरी कंपनी बनी है, जिसने हाल ही में अपनी मौजूदा कारों के नए वेरिएंट लॉन्च करने के अलावा अपनी नई एसयूवी को भी भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। कार सेगमेंट में हुंडई कुल मार्केट में 15.08% हिस्सेदारी अपने पास रखती है। टाटा मोटर्स अगस्त 2022 में देश की सबसे ज़्यादा कार बेचने वाली तीसरी कंपनी बनकर सामने आई है। कंपनी ने हाल ही में अपनी इलेक्ट्रिक कार के अपडेट वर्जन लॉन्च करने के अलावा मौजूदा एसयूवी के नए वेरिएंट भी मार्केट में उतारे हैं। कार सेक्टर में टाटा मोटर्स की हिस्सेदारी की बात करें तो कंपनी कुल मार्केट की 14.37% हिस्सेदारी रखती है। भारत में सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में सुधार जारी है तथा अगस्त 2022 के दौरान नए कारोबार में मजबूत बढ़त, मांग में सुधार और रोजगार सृजन के चलते स्थिति बेहतर हुई है। एक मासिक सर्वेक्षण में सोमवार को ये बात कही गई। मौसमी रूप से समायोजित S&P ग्लोबल इंडिया सेवा PMI कारोबारी गतिविधि सूचकांक अगस्त में बढ़कर 57.2 हो गया। ये सूचकांक जुलाई में 4 महीने के निचले स्तर 55.5 पर था। इस दौरान कारोबारी गतिविधियों में तेज उछाल देखा गया तथा रोजगार के मोर्चे पर 14 वर्षों में सबसे तेज वृद्धि हुई। समीक्षाधीन माह में लगातार 13वें महीने सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में सुधार हुआ। खरीद प्रबंधक सूचकांक की भाषा में 50 से ऊपर के अंक का मतलब गतिविधियों में विस्तार है, जबकि 50 से कम अंक संकुचन को दर्शाता है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।